एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथ सार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ग्रंथसार में स्वागत। आज हम बात करने वाले हैं अमेरिकी साहित्य के एक ऐसे उपन्यास की जिसने अपने समय में काफी हलचल मचाई थी। जॉन ओहारा का पहला उपन्यास अपॉइंटमेंट इन समारा 1934 में आया था। यह
हाँ, जॉन ओहारा अपने यथार्थवादी लेखन के लिए जाने जाते थे, खासकर अमेरिकी समाज, मतलब वहाँ का जो क्लास सिस्टम था, प्रतिष्ठा थी, उसको बड़ी बारीकी से दिखाते थे।
बिल्कुल। और उनका वो काल्पनिक शहर गिब्सविल, वो असल में उनके अपने शहर पॉट्सविल पेंसिल्वेनिया पर ही आधारित था, जैसे वो अपनी ही देखी समझी दुनिया लिख रहे हों।
सही कहा, उनकी स्टाइल को सामाजिक यथार्थवाद कहते भी हैं। संवाद एकदम असली लगते हैं और जिस तरह वो समाज के तौर तरीकों को पकड़ते हैं, कमाल है।
दिलचस्प बात यह है कि कहानी का बैकग्राउंड महामंदी का है, 1930 का, लेकिन फोकस आर्थिक मुश्किलों पर नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं, फोकस है एक खास तबके, मतलब जो अमीर ऊंचे लोग थे, उनके अंदर का जो मनोवैज्ञानिक बिखराव था उस पर।
और टाइटल अपॉइंटमेंट इन समारा, इसका भी अपना एक मतलब है।
हाँ, वो डब्ल्यू समरसेट मॉम की एक पुरानी कहानी से लिया गया है, एक मेसोपोटेमियाई कहानी,
वही जिसमें एक नौकर बगदाद में मौत को देख लेता है और डर के मारे समारा भाग जाता है।
हाँ, और जब वो समारा पहुंचता है तो मौत वहीं उसका इंतजार कर रही होती है। कहती है कि मेरा तुमसे मिलने का अपॉइंटमेंट तो समारा में ही था।
उफ, तो ये टाइटल सीधे सीधे उपन्यास के सेंट्रल थीम, मतलब भाग्य या नियति की तरफ इशारा करता है। क्या सब कुछ पहले से तय है?
यही सवाल है। और कहानी की रफ्तार देखिए, बहुत तेज है। क्रिसमस के आसपास का वक्त है, गिब्सविल शहर, और सिर्फ 3 दिन, महज 3 दिनों में पूरी कहानी घट जाती है।
और इन 3 दिनों में हम देखते हैं जूलियन इंग्लिश नाम के एक आदमी का बहुत तेजी से हुआ आत्मविनाश, एक तरह की ढलान पर फिसलता जाता है वो।
हाँ, और यही आज हमारी चर्चा का फोकस रहेगा कि कैसे वो सामाजिक दबाव, अंदर की असुरक्षाएं और बस एक पल का आवेग, कैसे ये सब मिलकर एक इंसान को बर्बादी की तरफ धकेल देते हैं।
सवाल यही है कि क्या उसका अंत पहले से लिखा था, उस समारा वाली मुलाकात की तरह, या ये उसके अपने फैसले थे जिन्होंने उसे वहां पहुंचाया? चलिए गिब्सविले की इस दुनिया में चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं।
तो कहानी शुरू होती है क्रिसमस ईव पर। जगह है लैंटनिंगो कंट्री क्लब, गिब्सविल के सबसे ऊंचे तबके का अड्डा। माहौल एकदम जश्न का है, शैंपेन वगैरह चल रही है, लेकिन हवा में कुछ तनाव सा है जो महसूस होता है।
ऊपर से सब ठीक पर अंदर कुछ गड़बड़ है।
बिल्कुल। और यही एंट्री होती है हमारे मुख्य पात्र जूलियन इंग्लिश की। कामयाब कैडिलैक डीलर है, ऊंचे समाज का हिस्सा, हैंडसम है, लेकिन शराब थोड़ी ज्यादा हो गई है और वो कुछ बेचैन सा लग रहा है।
और यहीं वो एक हरकत कर बैठता है जो सब बदल देती है,
और हैरी रेली नाम के एक आदमी के चेहरे पर फेंक देता है।
हैरी रेली, ये कौन था?
हैरी रेली भी अमीर था, पावरफुल था, लेकिन वो नए पैसे वाला था, आयरिश कैथोलिक। जूलियन का जो पुराना खानदानी प्रोटेस्टेंट वाला तबका था, वो उसे पूरी तरह से अपना नहीं मानता था। तो ये ड्रिंक फेंकना, ये सिर्फ बदतमीजी नहीं थी।
नहीं, ये उस समाज के जो अलिखित नियम थे उनका सीधा सीधा उल्लंघन था, एक तरह का सामाजिक धमाका।
बिल्कुल। सोचिए क्लब में क्या हुआ होगा, एकदम सन्नाटा छा गया होगा, लोग चौंक गए होंगे। जूलियन की पत्नी कैरोलिन, वो बेचारी शर्म से गड़ गई होगी, किसी तरह बात संभालने की कोशिश कर रही होगी।
लेकिन ऐसी बातें संभलती कहाँ हैं, जो दरार पड़नी थी वो पड़ चुकी थी। घर पे यकीनन बहुत झगड़ा हुआ होगा उस रात।
हाँ, रात तनाव में बीती और यहीं से जूलियन की वो फिसलन शुरू हो जाती है, जहां से शायद वापसी मुमकिन नहीं थी।
ये घटना गिब्सविल के समाज को भी दिखाती है, कितना बटा हुआ था वो समाज। पैसा, खानदान, धर्म, सब कुछ के आधार पर दीवारें थीं।
हाँ, खासकर पुराने पैसे वाले प्रोटेस्टेंट और नए पैसे वाले आयरिश कैथोलिक के बीच। और सबसे ऊपर थी प्रतिष्ठा, मतलब इज्जत, वही सब कुछ थी। एक एक बात, एक एक नजर उसी तराजू पर तौली जाती थी।
प्रतिष्ठा ही करेंसी थी वहां की।
बिल्कुल। और पात्र भी इसी कसौटी पर कसे जा रहे हैं। जूलियन इंग्लिश लगभग 30 साल का, बाहर से कामयाब आकर्षक, लेकिन अंदर वो असुरक्षित है, घमंडी भी है और शायद अपने इस ऊंचे तबके के दिखावे से ऊब चुका है। वो इस सिस्टम का प्रोडक्ट भी है और कैदी भी।
और उसकी पत्नी कैरोलिन
इंग्लिश खूबसूरत है, सामाजिक तौर तरीकों में माहिर है, वो जैसे इसी प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए जीती है। शायद यही उसकी भूमिका है उस समाज में।
और हैरी रेली, जिसके चेहरे पर ड्रिंक फेंकी गई?
वो सेल्फ मेड करोड़पति है, ताकतवर है, लेकिन जूलियन के वर्ग के लोग उसे नीची नजर से देखते हैं। वो असली प्रैक्टिकल पावर का सिंबल है, जिससे जूलियन का वर्ग शायद चिढ़ता है या डरता है।
तो ये जो पहली हरकत थी जूलियन की क्लब में, क्या ये सिर्फ नशे का असर था या उसके अंदर कुछ और पकड़ा था, कोई गहरी बेचैनी?
मुझे तो ये सिर्फ नशे से ज्यादा लगता है, जैसे कोई गुब्बारा हो जो अंदर ही अंदर भरता जा रहा था और फिर अचानक फट गया। ये शायद उसके विद्रोह की या उसकी हताशा की पहली चीख थी। ये उस टोबोगन स्लाइड, उस फिसलन भरी ढलान की शुरुआत थी जहां से वो खुद को रोक नहीं पाया।
बात में दम है, क्योंकि ये फिसलन रुकी नहीं। क्रिसमस का दिन आता है और हालत और बिगड़ जाती है।
हाँ, कोई राहत नहीं। जूलियन का हैंगओवर भी है, गुस्सा भी है, दिन छोटी छोटी सामाजिक आपदाओं से भरा हुआ लगता है। पहले अपने माँ बाप के घर क्रिसमस डिनर पर कुछ तनाव होता है, फिर बाद में एक और पार्टी होती है और वहां
वो एक और बड़ी गड़बड़ कर देता है।
बिल्कुल, वहां वो फ्रॉगी ऑग्डन नाम के एक आदमी से भिड़ जाता है। फ्रॉगी समाज में इज्जतदार आदमी था, लड़ाई में अपना एक हाथ खो चुका था, वेटरन था।
और जूलियन उससे झगड़ता है?
झगड़ता ही नहीं, उस पर हाथ उठा देता है, शारीरिक हमला करता है। ये दूसरी घटना, ये उसे पूरी तरह से हाशिए पर धकेल देती है। अब वो सिर्फ नशे में गलती करने वाला नहीं रहा, अब वो एक खतरनाक अस्थिर आदमी माना जाने लगा।
अब तो उसके दोस्त भी उससे कतराने लगे होंगे।
हाँ, समाज ने जैसे उसके लिए दरवाजे बंद करने शुरू कर दिए, वो एकदम अलग थलग पड़ने लगा।
ये जो उसका गुस्सा है, खासकर फ्रॉगी पर हमला, कहीं ये उसकी मर्दानगी का संकट तो नहीं दिखाता? जैसे हैरी रैली की दौलत के सामने वो खुद को कमजोर महसूस करता है, और फिर फ्रॉगी जैसे शारीरिक रूप से कमजोर आदमी पर अपनी भड़ास निकालता है, अपनी खोई हुई ताकत जताने का एक भद्दा तरीका।
हो सकता है जैसे वो चीख रहा हो कि मैं कमजोर नहीं हूँ। और इस सब में कैरोलिन की हालत सोचिए, अपने पति को अपनी आंखों के सामने सब कुछ बर्बाद करते देखना, कितनी बेबसी महसूस हुई होगी उसे।
उसका प्यार, उसकी वफादारी, सब धीरे धीरे शर्म और डर में बदल रहे होंगे।
बिल्कुल, और आखिर में जब वो जूलियन को छोड़ने का फैसला करती है, तो वो शायद खुद को बचाने का एक तरीका था। वो भी तो उसी सिस्टम की शिकार थी जहां औरत से उम्मीद की जाती है कि वो बस खूबसूरत दिखे और चुपचाप सब सहे।
और इसी बढ़ते अकेलेपन में जूलियन एक और अजीब हरकत करता है।
हाँ, वो एक रोड हाउस जाता है और वहां हेलेन होलमन नाम की एक औरत से मिलता है जो किसी जर्नलिस्ट की प्रेमिका है। वो उसे रिझाने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत भद्दे तरीके से, और कामयाब नहीं होता।
ये जैसे इस बात का सबूत था कि उसका वो पुराना चार्म, उसका रुतबा अब खत्म हो चुका था। वो अपना कंट्रोल खो रहा था हर तरह से।
कहानी में फिर एक और किरदार आता है, अल ग्रेको।
हाँ, अल ग्रेको। वो कौन था?
वो एक लोकल बूटलेगर था, मतलब अवैध शराब का धंधा करता था, छोटा मोटा गैंगस्टर टाइप, समाज के उस ऊंचे तबके से बिल्कुल बाहर का आदमी।
और जूलियन का उससे क्या लेना देना?
जूलियन उसके एक आदमी से, मतलब उसके गुर्गे से लड़ पड़ता है, हाथापाई होती है और जूलियन उसे पीट देता है।
ये क्या दिखाता है, ये मारपीट क्यों?
शायद ये उसकी हताशा का सबसे निचला पॉइंट था, जब उसे लगा कि सभ्य समाज में अपने लोगों के बीच वो हार चुका है, तो वो सड़क के नियमों से, ताकत के जोर से खुद को साबित करने की कोशिश कर रहा है, जैसे वो कह रहा हो, देखो मैं अभी भी लड़ सकता हूँ, मैं अभी भी जीत सकता हूँ।
एक तरह से ये उसके अंदर की वो आदिम प्रवृत्ति थी जो बाहर आ गई जब सभ्यता का नकाब उतर गया, या शायद ये उस सभ्य समाज के पाखंड पर एक तमाचा था।
और फिर आता है तीसरा दिन, 26 दिसंबर। अब तक जूलियन लगभग सब कुछ खो चुका है, पत्नी साथ नहीं है, समाज ने मुंह फेर लिया है, दोस्त भी नहीं रहे।
और तभी उसे एक और झटका लगता है।
हाँ, उसे पता चलता है कि हैरी रैली, वही आदमी जिसका उसने क्लब में अपमान किया था, अब बदला ले रहा है। वो बैंक पर अपने असर का इस्तेमाल करके जूलियन का लोन वापस मंगवा रहा है।
यानी उसकी कैडिलैक डीलरशिप भी अब खतरे में, उसका बिजनेस भी खत्म।
बिल्कुल, तो अब वो सामाजिक रूप से, भावनात्मक रूप से और आर्थिक रूप से भी
बिल्कुल
पूरी तरह दिवालिया हो चुका है,
एकदम अकेला।
जी,
उसका अलगाव पूरा हो चुका था।
हाँ, वो अपने आखिरी कुछ घंटे उसी शहर की सड़कों पर भटकता है जिसने उसे सब कुछ दिया था और अब सब कुछ छीन लिया। वो जहां भी जाता है उसे या तो नफरत मिलती है, या बेरुखी, या फिर तरस भरी निगाहें।
किसी से जुड़ने की उसकी कोशिशें भी बेकार जाती हैं।
हाँ, वो अपनी पुरानी प्रेमिका से मिलने की कोशिश करता है, पादरी से बात करने की सोचता है, माँ बाप के पास जाता है, लेकिन कई कोई कनेक्शन नहीं बन पाता।
हर दरवाजा जैसे बंद हो चुका है।
हाँ, वो एकदम अकेला महसूस करता है और तब वो अपना आखिरी फैसला लेता है।
वो समारा में अपने अपॉइंटमेंट तय कर लेता है।
बिल्कुल, वो घर लौटता है, गैरेज में जाता है, दरवाजे और खिड़कियां अच्छी तरह बंद करता है और फिर अपनी उस चमचमाती नई कैडिलैक कार का इंजन स्टार्ट कर देता है।
वही कार जो उसकी सफलता का प्रतीक थी।
हाँ, वही अब उसकी मौत का जरिया बनती है। धीरे धीरे गैराज कार्बन मोनोऑक्साइड गैस से भर जाता है और जूलियन इंग्लिश की सांसें हमेशा के लिए थम जाती हैं। उसके वो 36 घंटे का तूफान खत्म हो जाता है, एक दुखद अंत, लेकिन शायद शायद जिसे टाला नहीं जा सकता था।
ये कहानी हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है। कई परतें हैं इसमें। सबसे पहले तो वही सामाजिक वर्ग और प्रतिष्ठा का बोझ, गिब्सविले का वो सख्त ढांचा, वो अलिखित नियम, वो दिखावा।
जूलियन का विद्रोह उसी के खिलाफ था, लेकिन वो सिस्टम इतना ताकतवर था कि उसने जूलियन को ही कुचल दिया। प्रतिष्ठा एक सुनहरे पिंजरे की तरह थी, जहां से निकलने की कोशिश खतरनाक थी।
और फिर वो बड़ा सवाल, भाग्य बनाम आत्मविनाश। क्या सब पहले से तय था, जैसा कि टाइटल इशारा करता है, या जूलियन ने अपने हर कदम पर खुद चुनाव किए?
उपन्यास इसका कोई सीधा जवाब नहीं देता। ओहारा ये सवाल हमारे ऊपर छोड़ देते हैं। क्या हमारा चरित्र ही हमारी नियति बन जाता है? ये सोचने वाली बात है।
और ये उपन्यास अमेरिकी अपर क्लास के खोखलेपन पर भी एक तीखी टिप्पणी है। बाहर से सब चमक दमक, पार्टियां, महंगी गाड़ियां, लेकिन अंदर से
बिल्कुल खोखला। कोई मजबूत भावनाएं नहीं, रिश्ते सते ही, जरूरत से ज्यादा शराब और सच्ची हमदर्दी की कमी। जूलियन का पतन इसी खोखलेपन को उजागर करता है।
क्या हम कह सकते हैं कि ये अलगाव और पहचान की तलाश की कहानी भी है? जूलियन अपने समाज से, अपनी जिंदगी से, शायद खुद से ही कटावा महसूस करता था।
हाँ बिल्कुल, शायद उसकी वो विनाशकारी हरकतें, वो उस बनावटी दुनिया में कुछ असली, कुछ सच्चा खोजने की एक हताश कोशिश थीं, भले ही वो कोशिशें गलत रास्ते पर चली गईं।
ओहारा की लिखने की शैली भी इस कहानी के असर को बढ़ाती है। वो थर्ड पर्सन में लिखते हैं, लेकिन हमें अलग अलग किरदारों के मन में झांकने का मौका देते हैं।
हाँ, इससे हमें पूरे गिब्सविले समाज का एक खाका मिलता है और साथ ही जूलियन का अकेलापन और ज्यादा महसूस होता है। हम उसकी अंदरूनी कश्मकश को समझते हैं, जबकि बाहर की दुनिया उसे गलत समझ रही होती है।
और कहानी का सिर्फ 3 दिनों में सिमट जाना, ये एक अजीब सी अर्जेंस, एक तनाव पैदा करता है, जैसे सब कुछ बहुत तेजी से हो रहा है और रुकने का वक्त ही नहीं है।
और संवाद तो कमाल के हैं। इतने असली लगते हैं जैसे आप सच में उन लोगों को बात करते हुए सुन रहे हो। ओहारा की यह खासियत थी।
उनकी भाषा भी सीधी सपाट है, कोई ज्यादा भावुकता नहीं। लगभग एक रिपोर्टर की तरह वो बस बताते जाते हैं कि क्या हुआ। इससे पाठक थोड़ा दूर रहता है भावनात्मक रूप से। हम जूलियन के लिए अफसोस करते हैं, पर शायद उससे पूरी तरह जुड़ नहीं पाते,
जो शायद कहानी को और भी ज्यादा परेशान करने वाला बनाता है। हम बस देखते रहते हैं उसे गिरते हुए।
उपन्यास में सिंबल्स यानी प्रतीक भी बहुत गहरे हैं। वो कैडिलैक कार, अमेरिकी सपने का प्रतीक, सफलता का प्रतीक, जो आखिर में मौत का आज़ार बन जाती है।
हाँ, और शराब, जो पार्टियों की जान होती है, वही बर्बादी का कारण बनती है। और वो लैंटन एंगो कंट्री क्लब, सामाजिक ऊंच नीच का वो गढ़, जहाँ से जूलियन के पतन की शुरुआत होती है।
इस उपन्यास को पढ़ना कैसा अनुभव है, मतलब क्या महसूस होता है?
ये एक बेचैन करने वाला अनुभव है। जूलियन के लिए हमदर्दी से ज्यादा शायद एक डर, एक दुख महसूस होता है उसकी बर्बादी को देखकर। पाठक लाचार महसूस करता है।
और जो बात इसे और यादगार बनाती है, वो ये कि ओहारा हमें कोई आसान जवाब नहीं देते कि जूलियन ने ऐसा क्यों किया। कोई सीधी साधी मनोवैज्ञानिक व्याख्या नहीं।
बिल्कुल, वो बस हमें दिखाते हैं कि क्या हुआ। वो क्यों का सवाल हमारे जहन में घूमता रहता है और यही शायद इसका सबसे गहरा असर है।
ये हमें इंसानी जिंदगी की नाजुकता की याद दिलाता है। सामाजिक दबाव कितना ताकतवर हो सकता है और हमारे अंदर के राक्षस हमें कहाँ ले जा सकते हैं।
हाँ, और ये सवाल उठाता है कि जिसे हम प्रतिष्ठा कहते हैं, उसकी असली कीमत क्या है? क्या भाग्य बलवान है या हमारी मर्जी? ये कहानी सभ्य समाज की पोल खोलती है, उसके नीचे छिपी हताशा और हिंसा को दिखाती है। सिर्फ 36 घंटों में अर्श से फर्श तक का ये सफर वाकई रोंगटे खड़े कर देता है।
तो आखिर में अपॉइंटमेंट इन समारा हमें क्या सिखाता है? समाज के नियमों में बंधे रहने के दबावों के बारे में, या उस प्रतिष्ठा के खोखलेपन के बारे में जिसके पीछे दुनिया भागती है?
शायद ही दिखाता है कि बाहरी सफलता अंदरूनी शांति की गारंटी नहीं है, और ये भी कि एक कठोर समाज जिसके नियम तोड़ने की हिम्मत कोई करे तो वो उसे कैसे कुचल सकता है, खासकर अगर वो इंसान अंदर से भी टूटा हुआ हो। ये आत्मविनाश और नियति की एक ऐसी कहानी है जो मुझे लगता है आज भी उतनी ही प्रासंगिक है।
क्योंकि सामाजिक दबाव और पहचान का संकट तो आज भी लोगों की जिंदगी का हिस्सा है।
बिल्कुल, ये कहानी हमें उन दबावों के बारे में सोचने पर मजबूर करती है।
ये संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनोखी कृति के साथ। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।